الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دوسری سورت سورہ بقرہ کی 273 آیات ہم ختم کر چکے تھے اور یہ تیسرا پارہ چل رہا ہے، اس کے آگے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے اتوار کو ہم کچھ خیرات کے بارے میں بات کیے تھے، اور وہی پہلی آیت اسی کے سلسلے میں، اس کے بعد میں ربا کا مضمون ہے یعنی سود کا، اور یہ ہمارے معاشی حالات کے لحاظ سے بڑا اہم مضمون ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں مجھ سے آپ سب سے کوئی غلطی نہ کروانے لگائے، اس کی صحیح سمجھ ہم لوگوں کو دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اپنا مال رات دن چھپا کر اور کھلے طور پہ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے پالنے والے اللہ کے پاس اس کا بدلہ ہے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ خوف فیوچر سے، مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، اور غم جو ہے پاس سے، ماضی سے تعلق رکھتا ہے. تو اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی کہ خیرات قبول نہیں ہونے کا خوف نہیں ہوگا، اور خیرات نہیں کرنے کا غم نہیں ہوگا، اگر پرٹیکولرلی آپ نے. ورنہ ایسے لوگوں کو انشاءاللہ نہ کوئی فیوچر کا خوف ہوگا، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور توبہ کر لیے ہوں گے تو پاسٹ کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا کہ بھئی ہم نے توبہ نہیں کی، توبہ تو کرنا ضروری ہے. تو یہاں یہ خرچ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، وہ لوگ جو اپنا مال رات اور دن چھپا کر اور کھلے طور پہ دیتے ہیں، رات دن خیرات کرتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں، کھلے طور پہ بھی دیتے ہیں، تو ان کے ایسے لوگوں کے لیے ان کے پالنے والے مالک اللہ کے پاس ان کا بدلہ ہے، ان کا اجر ہے. اب اس سے پہلے میں پھر دوہرا دیتا ہوں، بڑے اہم کنڈیشنز ہیں کہ یہ خیرات قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 کنڈیشنز بتائے تھے، اور بڑے اہم کنڈیشنز ہیں. ابھی کچھ بات ہو رہی تھی ایسی، میں ایسی معاملے میں اپنے آپ کو اینالائز کرا تو اس معاملے میں یہ 7 کنڈیشنز میں فلفل نہیں کر رہا تھا، تو ایک ڈر ہوا کہ یہ خیرات قبول نہیں ہوگی. اگر آپ بھی اپنی خیراتوں کو کا جائزہ لے اور اینالائز کرے کہ یہ 7 کنڈیشنز پورے ہو رہے ہیں کیا خیرات میں، تو پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ خیرات کر کے احسان نہیں جتانا، بہت زبردست کنڈیشن ہے. دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ خیرات کر کے جس کو خیرات کر رہے ہیں اس کو تکلیف نہیں دینا کہ بھئی آپ اس سے اتنا پیسہ دیے، تم کو فلانا کام کر دو، فلانا کام کر دو، اس سے تکلیف نہیں، مزدوری نہیں ہے، یہ خیرات ہے. تیسرا کام ہے کہ ریا ناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات نہیں کرنا کہ بھئی لوگ بولیں کہ سخی ہیں، ان کے لیے خیرات نہیں کرنا. پھر چوتھا کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خیرات کرنا، دوسروں کی خوشی کے لیے خیرات نہیں کرنا. یہ تو ہر معاملے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کرنا. پھر پانچواں معاملہ ہے کہ جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے خیرات کرنا، جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے خیرات کرنا. پھر چھٹا کنڈیشن یہ ہے کہ پاک اور فائدہ مند مال خیرات کرنا. سڑا ہوا کھانا، پھٹا ہوا کپڑا دے کے ہم سمجھتے کہ ہم بہت بڑی خیرات کر دیے، کیا سخی ہے میاں، بولے وہ وارڈروب کھولے، جتنے بوشٹر پھٹے ہوئے تھے اٹھا کے غریبوں کو دے دیا، بولے کیا سخی آدمی ہے. تو یہ خیرات نہیں ہوئی، یہ تو کچرا پھینکے آپ، کچرے کی کنڈی میں پھینکنے کے بجائے غریب کو دے دیا. تو خیرات میں فائدہ مند مال دینا، اور پھر خبیث مال نہیں دینا، خراب مال نہیں دینا، حرام کی کمائی نہیں دینا، حلال کی کمائی میں سے خیرات، چھٹا کنڈیشن. اور ساتواں کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دینا، کہ خیرات اگر کریں تو اللہ تعالی کی توجہ ہمارے طرف ہو، لوگوں کی توجہ ہمارے طرف نہ ہو، ہمارا پورا معاملہ لوگوں کا رہتا. اب یہ پورا مطلب سمجھ میں آ گیا تو خیرات کون کس کو کرتا ہے؟ سورہ حشر کی 7 آیت آ گئی ہے کہ یعنی غریبوں کو جو ہے امیروں کا پیسہ دینا چاہیے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تو امیروں کی دولت امیروں ہی میں ہی گھومتے رہے، سورہ حشر کی 7 آیت ہے. تو پھر اب اس کا ڈیفینیشن ضروری ہے، کیونکہ ربا کو سمجھانے کے لیے اس ڈیفینیشن کو الٹا کرنا پڑے گا ہم. اب ڈیفینیشن خیرات کا کیا ہے؟ کہ ایک امیر آدمی کا اچھی نیت سے غریب آدمی کی مدد کرنا، या अच्छा सीधा डेफिनेशन याद रखिए, एक अमीर आदमी का अच्छी नीयत से गरीब आदमी की मदद करना, ये हुई खैरात। अब इसके बाद में इसका ऑपोजिट मजमून आ रहा, देखिए मसलहत समझिए। आयत नंबर 261 से खैरात का मजमून चल रहा है, अब रिबा का, ये 5-6 आयतों में रिबा का मजमून आ गया। ताकि आप खैरात सदकात समझें, उसको उल्टा कर लें तो रिबा समझ में आया। तो फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतान मिनल मस। यानी वो लोग जो रिबा खाते हैं, रिबा का मतलब हम समझेंगे जैसा सूद है, वो लोग जो सूद खाते हैं कियामत में ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसा किसी को शैतान ने अपने असर से दीवाना बना दिया है या मजनून बना दिया है। देखिए हमारे बचपन में एक लफ्ज खपती चलता था उर्दू में, उनको खप सवार हो गया है, हजरत जुनून सवार हो गया। अब आजकल ये लफ्ज को नहीं समझ रहे हैं। तो जो लोग सूद खाते हैं वो लोग कियामत में ऐसे खड़े रहेंगे जैसे कि शैतान ने, ये शैतानी अमल है, रिबा शैतानी अमल है, जैसा कि शैतान ने उनको अपने असर से खपती बना दिया है, दीवाना बना दिया है, मजनून बना दिया, ऐसा खड़े रहे। उसकी वजह देखेंगे हम कि क्यों ऐसा होगा। अब हम रिबा को डिफाइन करना है, रिबा क्या चीज है। तो रिबा पहले तो कुरान को ले लें हम, कुरान में रे बेवाओ का मादा किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। एक जगह हम अभी यहां पढ़ चुके हैं पिछले इतवार को कि रब्बतिन का लफ्ज आया, रब्बा ऊंचा मुकाम, जहां खेती बाड़ी बड़ी अच्छी होती है, जहां आपकी मेहनत में इजाफा मिलता है, खेती बाड़ी में इजाफा मिलता है, उसको रब्बा कहा गया। फिर दूसरी जगह ये जो कफ आता है उसको रबर कहा गया है, यानी जो पानी में अगर आप साबुन मिलाए तो जो कफ आता है वो झाग को रिबा कहा, क्योंकि वो फूलता है। फिर उसके बाद में जमीन में जब आप बीज बोते हैं तो जमीन भी फूट के झाड़ निकलता है, तो उसको भी रबत कहा गया। तो मालूम हुआ किसी चीज में ज्यादती करने को रिबा बोलते हैं। अब ये रिबा का जो मफहूम है वो अगर आप डिफाइन करें तो वो ऐसा है कि वो इजाफा रकम जो खर्च पर मोहलत देने के लिए ली जाती है। टेक्निकल डेफिनेशन होना है इसका मसले को समझने के लिए, तफसीर इसी को बोलेंगे आप। खाली तर्जुमा पढ़ दिया तो फिर क्या समझ में आएगा। यानी रिबा सूद किसको बोलेंगे आप, कि किसी आदमी किसी जरूरतमंद आदमी को आप पैसे दिए, मैं आपको 1000 रुपये दिया, आप बोले मैं 1 साल के बाद वापस करता हूं, तो वो 1 साल तक आपके पास मेरी रकम जो रहेगी वो मोहलत के लिए मैं आपसे पैसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं, उसके ऊपर ले रहा हूं, 1000 रुपये के ऊपर ले रहा हूं, ये सूद होगा। अच्छा अब रिबा को सूद कहा गया, ब्याज कहा गया, हिंदी में मिट्टी कहा गया है, इंग्लिश में इंटरेस्ट कहा गया है, और फिर यूजुअली कहा गया है। अब ये तमाम अल्फाज से हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाता कि रिबा क्या है। तो अब यहां पहले हमको ये समझना है कि नुज़ूल कुरान के वक्त रिबा को क्या समझते थे, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए कि अगर मैं आपसे कहूं आज कि भाई आप 7:30 बजे लॉग ऑन कीजिए, मैं इंटरनेट पे आप बात कर रहा हूं आपसे, ये बात अगर मैं 50 साल पहले बोलता तो मेरे बुजुर्ग नहीं समझ सकते थे, क्योंकि ना कंप्यूटर का नाम था, ना इंटरनेट का नाम था, ना लॉग ऑन करने का नाम था। तो नुज़ूल कुरान के वक्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जब जो कि वहां के अरब उन अल्फाज से अच्छी तरह से वाकिफ थे। कुरान की शान है ये। आज का यानी बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी कुरान को समझ सकता है और अरबी का इल्म रखने वाला भी कुरान को समझ सकता है। ये लचक है, किसी किताब में आपको लचक नहीं मिलेगी। इकोनॉमिक्स की कोई किताब ले लिया आप, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को देइए, नहीं समझेगा वो। माशाल्लाह कुरान जो जहीन बच्चे हैं वो, मेरे अपने तर्जुमे का तजुर्बा है कि लोग बोले कि भाई बच्चा 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में मगर वो कुरान समझ सका, माशाल्लाह तो इतनी सादी अंग्रेजी है। तो अब यहां वो जमाने में रिबा का क्या मफहूम था, तो दो तरीके थे। एक तरीका यह था कि भाई मैं आपको 1000 रुपये दिया और एग्रीमेंट यह हुआ कि आप 100 रुपये हर महीना मुझे सूद देंगे जब तक कि आपको 1000 रुपये अदा ना कर दें। तो आज जो तरीका है वो क्या है कि ये 1000 रुपये भी मैं आपको नहीं देता हूं, 100 रुपये मिट्टी पकड़ लेके 900 रुपये देता हूं। मैं एक केस में सिक्योरिटी में इन्वॉल्व था, मुझे वो केस अच्छी तरीके से मालूम है। कि वो बेचारी कोई औरत 1000 रुपये बेटी की शादी के लिए कर्जा ली थी कोई किसी दुकान वाले से, तो वो 1000 के बजाय उसको 900 दिए गए। 3 साल तक वो माहाना 100 रुपये देती रही, 3600 पे करी। तो 3600 पे करी तो अब उसके बाद में कोई साहब उसकी मदद करे देने के लिए तो वो 1000 रुपये वापस करी, तो इन्हें 900 रुपये उसके हाथ में आए और 3600 रुपये उसने अदा किए हैं। 900 रुपये किधर और 3600 रुपये किधर, चार गुना उसने अदा किया। तो एक तरीका यह था अरबों में। दूसरा तरीका यह था कि भाई आप मुझसे 1000 रुपये लिए, अब मैं बोला कि भाई 1 साल के बाद अगर आप वापस कर रहे हैं तो मुझे 2000 देना। अब 1 साल के बाद आप वापस नहीं कर सके तो अब यह बात हुई कि भाई सूद पर भी सूद देना आप, सूर दर सूद, सूरे उसमें रोम में जो बात आई है सूद दर सूद जो बात होती थी कि अब 1000 के 2000 हो गए तो आप 1000 पे भी सूद देना और वो 1000 जो सूद हुआ उस पे भी सूद देना, तो 2000 पे सूद देना, तो 2 साल के बाद आप देंगे तो 4000 रुपये देंगे आप मुझे। अच्छा आप 2 साल के बाद भी नहीं दे सके तो फिर उसके 8000 हो जाएंगे। तो अब यहां इसमें देखिए गरीब गरीब बनते चले जा रहा है, अमीर अमीर बनते चले जा रहा है। इस फैक्टर को अंडरलाइन कीजिए, आप इस फैक्टर को अंडरलाइन कीजिए कि वो जमाने में जो रिबा था, सूद था, इंटरेस्ट था, यूजरी था, ब्याज था, मिट्टी थी, वो जमाने में जो थी उससे ये हो रहा था, आज भी जो चल रहा है उससे ये हो रहा था कि गरीब गरीब बनते चले जा रहा है, अमीर अमीर बनते चले जा रहा है। तो ये हुआ डेफिनेशन इसका। फिर उसके बाद में आप ये देखिए कि अल्लाह ताला यानी खैरात में रहमदिली है, जज्बा अगर आप देखें इंसान का तो खैरात में रहमदिली है, सूद में संगदिली है, आपको गरीब से कोई हमदर्दी नहीं है, आपको पैसे से दिलचस्पी है खाली, आप गरीब को जो है उसका खून चूस के उसकी तरफ से पैसे ले रहे हैं और जो है कोई हमदर्दी नहीं है, और इसीलिए खैरात जायज है और सूद जो है नाजायज। तो यहां ये जो बात आ रही है कि जो सूद खाते हैं वो लोग कयामत के दिन ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे कि शैतान ने अपने असर से उन लोगों को दीवाना, खपती, मजनून बना दिया है। इसकी वजह क्या है? जालिका बि अन्नहुम खालू इन्नमल बैयू मिस्लुर रिबा। इसकी वजह यह है कि ये लोग कहते थे कि व्यापार भी तो सूद की तरह है। ये कौन लोग कहते थे? हिजरत से पहले मदीने में यहूदियों का सूदी कारोबार था। ये जो जुमला है अल बैयू मिस्लुर रिबा, ये यहूदियों का जुमला है कि जो है व्यापार भी तो सूद के बराबर है। कैसा बराबर है? उनका जो आर्ग्यूमेंट था भाई मैं 100 रुपये में एक किताब खरीदा, खरीद के 115 रुपये में बेचा, मैं 15 रुपये का फायदा हुआ, उसके बजाय मैं 100 रुपये किसी गरीब को दिया उससे 115 रुपये ले लिया मैं, तो व्यापार भी तो इसके बराबर। अल्लाह ताला उसका जवाब दे दिए कि वह अहल्लाहुल बई व हर्रम अर्रिबा। अल्लाह ताला ने व्यापार को हलाल किया है और सूद को हराम कर दिया। बात क्लियर हो गई। अच्छा एक और एक शरई मसला देखिए आप। ये यहूदियों के जुमले पे फतवा नहीं होता, फतवे जो होते हैं वो अल्लाह ताला के जुमले पे होते हैं या पैगंबरों के जुमले पे होते हैं, यहूदियों के जुमले पे फतवे नहीं होते। क्यों? हारून बोला कि ये जायदाद तो मैं अपने इल्म से कमाया हूं, कुरान में है वो लिखा हुआ। अब आप बोलेंगे कुरान में है साहब, जायदाद उन्होंने अपने इल्म से कमाया बल्कि कुरान में है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यरजुकू मै यशा बिगैर हिसाब, हम जिसको चाहते हैं बेहिसाब रिस्क देते हैं। लहू माफी समावाती वलर लिल्लाही माफी समावाती वलर मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, हमने जो तुमको दिया है। तो मालूम हुआ कि काफिरों के जुमलों पे जो है शैतान के कई जुमले रिपोर्टेड है। जैसा कोई आलिम साहब का मैं नाम क्यों, आप लोग सब इशारतन समझ जाएंगे कि कोई साहब अपनी बच्ची का नाम लुबना रख रहे थे बोलते, तो आलिम साहब माशाल्लाह समझाते हुए जरा मजाक में समझा देते बात को, तो उन्होंने कहा कि भाई लबन का मतलब दूध का होता है और लुबना जो है दूध देने वाली ऊंटनी के। बोले नहीं साहब कुरान में है ना, تو بولے قرآن میں میاں ابلیس بھی ہے نا بلقیس نفیس سے ملتا ہوا, ابلیس بھی قرآن میں ہے, رکھ لو پھر ابلیس نام, تو نام کے کچھ معنی ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جملہ کس کا ہے, یہ جملہ یہ یہودیوں کا جملہ ہے. یہودی جو ہے, دیکھیں یہودی بیوپار کو سود سے کمپیر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے بیوپار کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے, تو یہودیوں کے اس جملے پہ فتویٰ نہیں ہو سکتا, فل سٹاپ. اب اس کو ہم, یہ مضمون جب ختم ہوگا اس کو پھر اٹھا کے وہاں دیکھیں گے, کیونکہ اب جو ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو من جاہو موعظتن من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ, اور جس کے پاس یہ نصیحت پہنچ چکی ہے اپنے ان کے پروردگار سے اور وہ یہ سودی کاروبار سے رک جائے, تو جو کچھ گزرا وہ گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, کیونکہ جب حکم نہیں تھا, حکم نہیں تھا, غلطی ہو گئی, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو, جو گزر چکا گزر چکا. وہ من آدا فلائی کا اصحاب النار ہم فیہا خالدون, پہلی دھمکی آ رہی ہے. اور جو کوئی یہ ربا کے معاملے کی طرف پلٹا, یعنی سود لیا, یہ حکم آنے کے بعد بھی اگر سود لیا, تو پھر یہ آگ والے ہیں اس میں رہیں گے. پہلی دھمکی آ گئی سود کے بارے میں, پہلی دھمکی آ گئی کہ دیکھو دوزخی ہوگا سود بھی, ایک دھمکی آ گئی کہ یہ آخرت کا معاملہ معلوم ہو گیا کہ جو سود کھانے والے ہیں وہ دوزخی ہوں گے. چلیے آگے بڑھیے. اب اللہ تعالیٰ ربا کو, سود کو ڈیفائن کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھیے کہ اس کو کس طریقے سے ہمارے ذہن میں بٹھانا ہے. یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات, اللہ تعالیٰ ربا کو, سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو, وہی یربی, ربا کا ہی جو مادہ ہے رے بے واؤ, وہی لفظ ہے, اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. امدن ہے یہ, بائی چانس رے بے واؤ کا مادہ استعمال نہیں ہوا, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ امدن ہے. ربا کا ذکر آیا اور بول رہے ہیں کہ واللہ یمحق اللہ ربا و یربی صدقات, اللہ تعالیٰ خود جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے, 700 گنا بڑھاتا ہے. اب ربا کا ڈیفینیشن آ گیا کہ کیا. اچھا پھر دوسرے سورہ روم کی 29 آیت میں کہا گیا ہے کہ زکات کو بڑھاتا ہے, ربا کو مٹاتا ہے زکات کو بڑھاتا ہے. تو اب ہم کو ڈیفینیشن, علماء لغت کرتے یہ ہیں کہ اگر ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا اپوزٹ لفظ لے کے اس سے وہ لفظ کو سمجھاتے ہیں. جیسا آپ کو خیر سمجھ میں آ رہا ہے, اچھا, اور شر سمجھ میں نہیں آ رہا, قرآن میں ایک دم لفظ آ گیا شر کا, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, تو شر خیر کا اپوزٹ, خیر یعنی اچھا ہی, شر یعنی برائی. آپ کو نہار سمجھ میں آ گیا دن, لیل سمجھ میں نہیں آیا, تو لیل کا, نہار کا اپوزٹ کیا ہے, لیل. تو قرآن کا مزاج بھی ایسی ہے کہ قرآن نے اپنے الفاظ کو اس طریقے سے سمجھایا, اپوزٹ یوز کر کے سمجھایا, حسنات سیئات, کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں اپوزٹ سے سمجھایا. تو اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ ربا اپوزٹ ہے صدقات اور زکات کا. اب صدقات اور زکات کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں, کیا ہے کہ ایک امیر آدمی کا اچھی نیت سے غریب آدمی کی مدد کرنا, اس کا اپوزٹ کیا ہوگا. ایک امیر آدمی کا غریب آدمی سے بری نیت سے پیسے کھینچنا, ربا کا ڈیفینیشن جو قرآن سے نکلتا ہے, علماء لغت کے اصول کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ربا کا ڈیفینیشن یہ نکلتا ہے کہ ایک امیر آدمی کا بری نیت سے غریب آدمی سے پیسے کھینچنا, ایکسپلائٹیشن جس کو بولتے ہیں آپ. اچھا پھر اس کے بعد میں یہاں صدقات ربا کی ضد ہے, اپوزٹ ہے. آپ صدقات کو سمجھ کے اس کا ڈیفینیشن الٹا کر لیے تو ربا کا ڈیفینیشن آپ کو جو ہے کھل کے وہاں آ گیا ہے. اب یہاں سے جو ہے, یعنی سورہ حشر کی بھی جو آیت ہے کہ دولت امیر سے نکلے اور غریب کو پہنچے, تو اس کے الٹا ربا کیا ہوتا, اس کا الٹا ہو جاتا کہ دولت غریب سے امیر کے طرف جاتی, امیر سے غریب کے طرف نہیں آتی بلکہ غریب سے امیر کی طرف جاتی, جو قرآن کے معاشی اصول کے ایک اکنامک رول کے خلاف ہے, لہذا گناہ ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اور بے شک اللہ تعالی किसी इनकार करने वाले काफिर को, गुनाहगार को पसंद नहीं करता, जो तमाम कुरान को का इनकार कर दे, कुरान के खिलाफ जाके गुनाह करे, ये सूद खाए, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। उनका तो आ गया है कि ये दोजख में जलेंगे। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अकामुस सलाता व आतुस ज़कता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह करे, ईमान किस पे लाए, अल्लाह पे, फरिश्तों पर कि वो फरिश्ते अल्लाह ताला के गुलाम हैं, किताबों पे, बात आगे आ रही इंशाल्लाह वहां समझ जाएंगे, नबियों पर, आखिरत पर, तकदीर पर, इन चीजों पर ईमान लाए और अमल सालेह किए, यानी कुरान पे वैसे ही अमल किए जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इनके बारे में। और फिर वो अकामुस सलात, नमाज को कायम करें, ये प्लूरल है, देखिए नमाज को कायम करें, जमात कायम करें, सोशल यूनिटी का डिस्प्ले है सलात। सलात जो है सोशल यूनिटी का डिस्प्ले है। कुछ कन्वर्शन कुछ दिन पहले हुए थे, उनसे पूछे थे भाई क्यों तुम कन्वर्ट हुए, तो बोले भाई इस्लाम का बड़ा अच्छा मजहब है, नमाज में सब लोग एक साथ खड़े रह जाते हैं, अमीर गरीब फकीर चपरासी डायरेक्टर हर आदमी, कोई फील भी नहीं करता कि कौन मेरे बाजू खड़ा हुआ है। तो ये यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी, सोशल यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी के लिए नमाज कायम करना है। अल्लाह का जिक्र तो है, असल मकसद तो अल्लाह ताला का जिक्र है, दुनियावी फायदा जो है। फिर उसके बाद में जो ज़कात देते हैं, ज़कात क्या है, इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी। अब समझिए आप ज़कात, यानी जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए दिल तड़प रहा है आपका, तो आप उनको खर्च की जरूरत पड़ी तो खर्च दे रहे हैं, सूद नहीं ले रहे, मदद कर रहे हैं उनकी, आप सदकात में बदल दे रहे हैं, आगे बात आ रही है। सोशल यूनिट इकोनॉमिक यूनिटी होते चले जा रही। गरीब जो है अमीरों को चाहने लगे हैं कि भाई हमारा इतना ख्याल रखते, बच्ची की शादी में इतना पैसा दे दिए, बच्चे बीमार पड़े तो इतना मदद देते, इकोनॉमिक यूनिट हो गई, यूनिटी हो गई। फिर अमीरों के तरफ से भी गरीबों का ख्याल हमेशा नजर रख रहे हैं, भाई कोई जरूरत तो नहीं है आपको, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। तो नमाज कायम करो, ज़कात दो ऐसे लोगों के लिए जो है, जो ईमान लाए, अमल साले करे, नमाज कायम करे, ज़कात दिए, उनके लिए उनके पालने वाले मालिक के पास उनका पूरा बदला है, और उनको ना फ्यूचर का कोई खौफ होगा और ना जो है पास्ट का कोई गम होगा। तो ये जो पीस 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 के लिए जो तमाम लोग कर रहे हैं कि अमन हो, चौतरफ अमन हो, तो अमन का डेफिनेशन यही आ गया कि अमन ऐसा मुस्तकबिल जिसमें कोई खौफ ना हो और ऐसा माजी जिसका कोई गम ना हो। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोगों में से जिनकी ऐसी जिंदगी है, कोई गलती नहीं करे, गलती करे तो तौबा कर लिए, कोई गम नहीं है, और अल्लाह पे भरोसा है इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौबा कबूल करेंगे, माफ करेंगे, कोई गम नहीं है फ्यूचर का, कोई गम नहीं है। तो ऐसी कैफियत। अब रहा प्रेजेंट, तीन ही तो टेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो एक प्रोफेसर विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट को बड़ा अच्छा डिफाइन कर रहे हैं कि बोले कि पास्ट इज पास्ट, माजी गुजर गया, अपने हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, हो गई जो भी गलतियां हो गए, जो भी नमाजा हुए, गुजर गए। मुस्तकबिल अभी अपने हाथ में नहीं आया, कुछ भी नहीं कर सकते, कल देख लूंगा आपको, शाम में इंतकाल होगा, कुछ भी नहीं कर सकते, मुस्तकबिल हाथ में नहीं है। प्रेजेंट के बारे में उन्होंने कहा कि बाय द टाइम यू से नाउ इट इज पास्ट, अब बोले तक जो है माजी हो गया, अब भी बोले तो फिर माजी हो गया, तो आपके हाथ में है ही क्या। मैं वो अपनी मजबूरी पे वही तो सोचता हूं कि भाई देखिए, जो कर गुजरे वो कर गुजरे, उस पर अपना बस नहीं है, जो आने वाला है वो कर नहीं सकते, अभी वो आया नहीं है, वो माजी बोलने से, हाल का हाल ये है कि बोलने तक वो माजी हो जा रहा है। तो फिर एक जिंदगी ऐसी बताई गई है कि ना कोई फ्यूचर का कोई गम होगा, खौफ होगा, ना पास्ट का कोई गम होगा। अब यहां हुक्म आ गया है, रिबा के हराम होने का हुक्म आ गया, इंपरेटिव टेंस जिसको बोलते हैं, या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रूल मा बखिया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन। अरे वो लोगों जो ईमान लाए हो, जो सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम बाकी सूद नहीं छोड़ोगे तो फिर मोमिन नहीं है तुम। देखिए कैसी धमकी है, तीसरी धमकी है, ईमान से खारिज हो जाएंगे अगर तुम रिबा नहीं छोड़ेंगे। इतनी तगड़ी, पहले तो दोजख का बता दिया आखिरत में, अब यहां बता रहे हैं कि जो है अगर तुम रिबा नहीं छोड़ोगे तो फिर मोमिन नहीं होगे, बाकी जो बचा है छोड़ दो। फ इन लम तफलू فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تو ایسی دھمکی ہے کہ اگر تم یہ نہ کرو، ربا سے نہ رکو، تو پھر اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا. ہے کسی میں دم؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کا ہے کسی میں دم؟ ویسٹ میں، ایسٹ میں، ہائیلی سائنٹیفکلی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز میں اگر اللہ کو پہچانے ہیں تو کسی میں دم ہے جنگ کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول سے؟ اتنی بڑی دھمکی آئی ہے ربا کے. اب اس کا ریزن آپ کو کھل کے آئے گا کہ اس کا ریزن کیا ہے. اور پھر کہا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم یہ خرچ کے معاملے کی طرف پلٹو تو تم نے جو اصل مال دیا تھا وہ تمہارے لیے ہے، وہ نہیں لے سکتے ہو. بھئی 1000 روپے میں دیا تھا، اب میں ربا نہیں لوں گا آپ سے، آپ جب بھی سہولت ہے آپ 1000 روپے دے دیں. اب یہاں ربا کا مزاج سمجھا رہے ہیں، ہم لوگ اتنا مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں ان آیات کو. ربا کا مزاج کیا سمجھا رہے ہیں کہ لا تظلمون ولا تظلمون، پہلا پوائنٹ، تم ظلم مت کرو، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے. ظلم کے 2-3 معنی آتے ہیں، ظلم کے معنی ناانصافی کے آتے ہیں، کمی کرنے کے آتے ہیں، زیادتی کرنے کے آتے ہیں. تم غریب کی دولت میں کمی مت کرو، تمہارے اجر میں کمی نہیں ہوگی. تم غریب کی دولت میں کمی مت کرو، تمہارے اجر میں جو ہے کمی نہیں ہوگی. پھر اب یہاں تو بالکل صاف آ گیا کہ ان کانا ذو اسرتی اسرتن نظرتن الى میسرہ، اور اگر قرض لینے والا کوئی تکلیف میں ہے تو پھر اس پر آسانی ہونے تک انتظار کرو. سود کے واسطے نہیں، اصل مال کے واسطے. 1000 روپے دیا تھا میں آپ، بولیے صاحب حکم آ گیا ہے میں سود آپ کو معاف کر دیتا ہوں، آپ مجھے میرا جو اصل رقم ہے 1000 روپے دے دو. اس پہ سیکنڈ کنڈیشن آ رہا، آپ بولے نہیں صاحب میں میرے حالات ایسے ہیں میں اب نہیں دے سکتا ہوں. تو انتظار کرو جب تک کہ آسانی ہو. دیکھیے پورا غریبوں کا پروٹیکشن آ رہا، یہ تھیم آپ ذہن میں رکھیے. نو ایکسپلائٹیشن آف دی پور، پورا جو مزاج آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ غریب کا ایکسپلائٹیشن مت کرو. اگر وہ تکلیف میں ہے تو مہلت دو. وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس خرچ کو صدقے میں، خیرات میں اگر کنورٹ کر دو تو اگر تم جانتے ہو تو یہ تو تمہارے لیے بہترین ہے. اب دیکھیے آپ مزاج پورا، یعنی ربا کا سود کا پورا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے کہ غریب ضرورت تھی، اس کو پیسہ لیا آپ سے، وہ ادا نہیں کر سک رہا ہے، اس کو مہلت دو. اور اگر وہ مہلت کے باوجود نہیں دے سکتا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ صاحب میں نہیں ادا کر سکتا. دیکھیے میں کچھ دن لیبر ڈپارٹمنٹ میں تھا، وہاں انڈیٹڈ نے سروے کیا تھا، میں قرضوں کا سروے کیا تھا، تو بعض وقت وہ پیون کو بلا کے بول دیتا تھا کہ بھائی روک دو، اب مت بھیجا اور لوگوں کو. اندر سے رونا آتا تھا، 25 برس ہو گئے بہن کی شادی کے لیے قرضہ لیے تھے. بعض کیسز ایسے آئے ہیں 25 برس پہلے بہن کی شادی کے لیے ان کے والد قرضہ لیے تھے، اور وہ قرضہ اتنا تھا ادا کر ہی نہیں سک رہے. تو 25 برس سے حساب ڈالے تو کوئی 20-30 گنا زیادہ جو ہے سود میں چلے گیا ہے. تو ہم ایک سجیشن دینے والے تھے کہ بھائی پورے انڈسٹری سے پیسہ جمع کر کے ایسے لوگوں کے جو ہے قرضے ادا کر دیے جائیں. تو جو مخلوص ہے اس سے پوچھو آپ کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پورا مزاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تکلیف میں ہو تو اس کو مہلت دو ادا کرنے کے لیے، اور اگر ہو سکتا تو وہ سود کو خیرات میں تبدیل کر دو. بولے چلو معاف کرو، چھوڑو آپ لے لو گے قصہ. یہ مزاج ہے سود کا. اب یہاں سے ہم کو ایک چار پانچ پوائنٹس مل رہے ہیں. پہلا اصول کیا ہے کہ پیسہ امیر سے غریب کی طرف جانا، غریب سے امیر کی طرف نہیں آنا، بری نیت. تو کوئی بھی کاروبار جس میں پیسہ غریب کی طرف سے امیر کی طرف جا رہا ہے بری نیت سے، تو وہ سود ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، پیسوں کی نہیں. بولے بھائی ایک گاؤں والے صاحب آئے، ان کے بچے کو کوئی کالج میں ایڈمیشن مل گیا، وہ کوئی پین خریدنے کے واسطے کوئی دکان پہ گئے. اب وہ دکان والے صاحب دیکھ لیے گاؤں کا ہے تو 5 روپے کا پین ہے، وہ آدمی کو اپنے سیلز مین کو بولے میاں وہ 15 روپے والا پین تو بتاؤ، حالانکہ 5 کا ہے. اب اس کو بتائے، انہیں بولا صاحب 15، اچھا چلو آپ گاؤں سے آئے نا 10 میں لے لو، حالانکہ قیمت اس کی 5 روپیے ہے. تو یہ 5 روپیے اس کی غربت کو جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ربا کے ڈیفینیشن میں. تو یہاں سمجھیے सलात कायम करना है सोशल यूनिटी के लिए और रिबा नहीं लेना है, जकात देना है, सदकात करना है इकोनॉमिक यूनिटी के लिए। ये कैसी कौम होगी अगर ऐसा हम लोग करने लगे। पहला पॉइंट, तो कोई भी कारोबार जिसमें पैसा बुरी नीयत से गरीब से अमीर की तरफ जाता है वो रिबा के डेफिनेशन में आ सकता है। फिर उसके बाद में ये कहा, ये मिजाज मिलता है कि गरीबों की मदद करो, खर्च देकर गरीबों की मदद करो और उनसे सूद मत लो, और अगर वो तकलीफ में है तो उनको मोहलत दो अदा करने के लिए, और अगर हो सकता है तो इसको जो है बिल्कुल चैरिटी में जो है बिल्कुल बदल दो। और आखिरी चीज जो ये पुअरों का जस्ट ये समझ में आता कि डू नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, गरीबों की गुर्बत का फायदा मत उठाओ, तरस खाओ उन पे, तरस खाओ। तुम अमीर की दौलत गरीब को जाना है, गरीब की दौलत अमीर को नहीं जाना है। अब चलिए ये यहूदियों के जुमले पे आते हैं कि आई अलबयू मिसलुर रिबा। अब इन्होंने कहा कि भाई व्यापार भी तो रिबा की तरह है, सूद की तरह है। अब बाज उलमा बेचारे करे क्या, इस जुमले पे फतवे दे दें, बई को कंपेयर करे, बई क्या है, व्यापार है। व्यापार में पहले भाई इसमें मेहनत लगती, सूद में मेहनत नहीं लगती, इस वास्ते हराम है। विरासत में भी तो मेहनत नहीं लगती, इनहेरिटेंस में। मैं खुद अपने वालिद से मकान इनहेरिट करा था बगैर मेहनत के, मजे में खाते पीते रहे, इंतकाल हुआ उनका मकान मेरे नाम पे आ गया, मेहनत नहीं लगी। तो इफ लेबर वर द क्राइटेरिया फिर विरासत हराम रहना चाहिए था। अच्छा, अब बाद लोगों का ख्याल है कि भाई रिबा में या तिजारत वगैरह में फायदा नुकसान दोनों हो सकता है। पहली चीज तो कर्जा लेके भाग जा सकता हूं, कई लोग भागे ऐसा हमारे साथ, कर्जा लेता भाग जाता, रिस्क नहीं है, कर्जे में डूबते नहीं हम। दूसरी चीज यह है कि अगर फायदे और नुकसान की बुनियाद पे अगर रिबा मना था तो फिर जुआ भी तो रिस्क है, फिर जुआ हराम क्यों है? जुए में रिस्क है ना, नहीं मालूम आप जीतते या हारते। तो ये जो बई मिसलुर रिबा को बेस बना के जो फतवा दिया गया है वो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैंने बई को हलाल किया, रिबा को हराम किया, बात खत्म हो गई वहां। ये पूरा रुकू पढ़ने पे ये बात समझ में आती है कि रिबा, सूद, मिट्टी, ब्याज, यूजरी, इंटरेस्ट, ये हराम इसलिए किया गया है कि गरीब को एक्सप्लॉइट मत करो, गरीब का पैसा अमीर ना चूसे। अब हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं आज के हालात में, आप ये उसूल को, कुरान एक उसूल बता दिया है, इस उसूल को अपने तमाम कारोबारी निजाम पे लगाइए, माशी निजाम पे। जहां कभी कहीं गरीब का पैसा अमीर की तरफ जा रहा है बुरी नीयत से, वो हराम। बात समझिए, जहां कहीं ऐसा हो रहा है कि गरीब का पैसा अमीर की तरफ जा रहा है तो ये हराम। हाँ, अमीर का पैसा गरीब की तरफ जा रहा है वो तो हुक्म है। अच्छा, फिर दूसरी तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे पास। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मंजल लजी युखरिजुल्लाह कर्जन हसनन युज़ाइफहू लहू अज़ाफन कसीरा, कौन है जो मुझे कर्ज दे कि मैं इसके कर्ज को जो है इजाफे पे इजाफा करके दे दूंगा। ये कौन सा कर्ज है? ये इन्वेस्टमेंट का कर्ज है। ये मैं अल्लाह की राह में दौलत लगा रहा हूं, अल्लाह की राह में अपनी मेहनत लगा रहा हूं, जान लगा रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को अल्लाह ताला बढ़ा के देने वाले हैं, तो इन्वेस्टमेंट से नहीं रोका गया है, खर्च से रोका गया है। वी आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन लोन एंड इन्वेस्टमेंट। बात यह समझिए, हम खर्च को इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कोई किसी बिजनेस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो फिका की फील्ड है। एक ब्रॉड रूल कुरान में दे दिया जाता, अकीमु सलात व आतु ज़कात, अभी पढ़े आप। नमाज कैसा पढ़ना कुरान में नहीं बताया, जकात कितनी देना कुरान में नहीं बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाज ऐसी पढ़ो, जकात इतनी दो। इस तरीके से माँ बाप से अच्छे रहो, नहीं बताए माँ बाप से कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी माँ बाप नहीं थे नबूवत मिलने के बाद, तो कोई सुन्नत से भी आपको जवाब नहीं मिलता। कोई प्रोसीजर नहीं बताए, आते ही खड़े रहकर सैल्यूट करना, अम्मा है तो बाबा है तो, कुछ भी नहीं बोले। अब हम लोग यहां देख लिए, यहां वाले पांवों को हाथ लगाते, हम भी पांवों को हाथ लगा लिए, गलत है, गैर इस्लामी तरीका है। यहां वाले झुकते, हम भी झुकना लगे, वो भी गलत है, किसी के अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना नहीं है। ये है कि उनसे इज्जत से पेश आओ, उनको उफ तक मत कहो,
क्या साहब? बोले मियां दादा पानी तो दो। क्या ये तक मत बोलो उनको, इतनी इज्जत से रहो। तो अब ये हर जगह का प्रोसीजर बदलेगा। एक एक अमेरिका में एक तलाक हुई, क्या बोले तो बहू जो है सास ससुरे के सामने टांगा पसार के बैठती थी बस। तो खैर वो बात हुई, मैं बोला शुक्र है बैठती थी वो, नहीं वो ऐसे मसलों पे जो है तलाक हो गई। अब भाई वहां का रिवाज है, वहां ये तरीके ही नहीं है, ये तहजीब और तमीज की वजह से आप काबतुल्ला चले जाइए, कई अरबों को देखे काबे शरीफ के तरीफ पैर करके बैठे हुए रहते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट कुछ जो है दूसरे लोगों से मिल गया है। तो इसीलिए एक उसूल अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो गरीब का पैसा बुरी नीयत से अमीर लोग ना लें। किसी भी कारोबार में ऐसा लेता है तो कोई लेता है तो हराम है। आप अपने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस माशी जो मामला थे उसमें ये उसूल को लगा के देखिए कि जहां कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि गरीब का पैसा अमीर के पास आ रहा है तो वो हराम है। नहीं, अमीर का पैसा गरीब के पास जा रहा है अच्छी नीयत से तो फिर वो हलाल है। अब आगे आइए बत्तखू। अच्छा, फिर उसके बाद में और एक चीज है कि जो आखिरी बात आती है कि सूद से गरीब और गरीब और अमीर और गरीब अमीर होता जाता है, और सूद ता क़यामत हराम है, इस पर कोई फतवे का सवाल ही नहीं पड़ा। सूद जो समझाया गया है ये ता क़यामत हराम है, जहां अल्लाह ताला का हुक्म है वहां फतवा नहीं होता। जैसा तलाक का हुक्म है उस पर फतवा कैसा होता, नमाज का हुक्म है। अब कोई बोले नहीं साहब मसरूफियत है आप एक जगह मिला लेके पढ़ ले सकते, ऐसा फतवा नहीं हो सकता। तो सूद तो ताकियामत हराम है। वत्तखू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, और उस दिन से डरो जब तुम सब जो है अल्लाह की तरफ पलटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और फिर हर शख्स को जो कुछ वो कमाया वो दे दिया जाएगा। वह हुम ला युज़लमून, और उसके अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। पूरा हिसाब किताब रह रहा है अल्लाह ताला के पास, कोई उसके पास कमी नहीं होगी। अब ये जो 282 आयत है ये कुरान की सब में लंबी आयत है। सूरह बकरा की शान ये है कि इसमें सब में बड़ी आयत आयतल कुर्सी भी आ गई और सब में लंबी, इससे लंबी आयत कुरान में कहीं नहीं है। और इसमें क्योंकि खर्च का मामला, देखिए सीक्वेंस हम लोग नोट नहीं करते, क्योंकि समझ के नहीं पढ़ते तो सीक्वेंस नोट नहीं करते। खैरात की बात आई, सूद की बात आई, अब ये जो लेन देन खर्च का मामला है, सूद तो नहीं लेंगे लेकिन लेन देन का मामला होगा। भाई मैं आपसे 5,000 रुपये लिया, उसके बाद में आप आए बोले कब लिया था मेरे को तो याद नहीं है। तो ये इंसान की फितरत है कि किसके सामने लिया था, बिला वजह आप उल्टा पलटा दिया आप उसके ऊपर। तो यहां पूरा हुक्म आ रहा है, और ये आजकल का इकोनॉमिक मिजाज भी है। ये देखिए आप कितना मॉडर्नाइज तरीके की बात आ रही है कि या अय्युह लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबूहू। वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम खर्च के लेन देन का मामला करो एक वक्त मुकर्रर तक तो उसको लिख लिया करो। एग्रीमेंट फॉर लोन, भाई मैं आपका घर खरीद रहा हूं, एग्रीमेंट फॉर सेल, ये आज का तरीका है, बिल्कुल मॉडर्न तरीका है। तो ये खर्च अगर लेना है तो लिख लिया करो। वल यक्तुब बैनकुम कातिबु बिल अदल, और लिखने वाला तुम्हारे आपस में इंसाफ से लिखे, अपनी मर्जी से नहीं लिखे बल्कि इंसाफ से लिखे। वला यादी कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहू अल्लाह फल यक्तुब, और जो कातिब है जो लिखने वाला है वो लिखने से इनकार ना करे, जिस तरह से अल्लाह ताला ने उसको लिखना सिखाया है उस तरीके से लिखे। वल युम लिल्लज़ी अलैहिल हक्कु वल यत्तखिल्लाह रब्बहू वला यखबसा मिनहु शैया, और जिस पे कर्ज है मखरूज, जो कर्ज ले रहा है वो जो है वो डॉक्यूमेंट डिक्टेट कराए। देखिए फिर यहां वीकर सेक्शन को हेल्प कर रहे हैं, अमीर आदमी लिखाना नहीं, जो कर्ज दे रहा है उन्हें लिखाने का नहीं है, जो गरीब आदमी है, गरीब परवरी मिजाज पूरा ये आ रहा है, गरीब परवरी। आयत नंबर 261 से ये बात चले आ रही है कि वो जो कर्ज ले रहा है वो लिखा है, और वो अल्लाह से डरे और अपने मालिक से पालने वाला जो है वो अल्लाह से डरे, और फिर इस लिखने में माल वगैरह में कोई कमी ना करे, धोखा ना दे। फइन लम कान अल्लज़ी अलैहिल हक़ सफीहन औ ज़ईफन औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला हुवा फल युमलिल वलीहु बिल अदल, और अगर जो कर्ज लेने वाला है वो नासमझ है, कमजोर है और लिखने की इस्तेतात उसमें नहीं है, लिखा नहीं सकता वो, तो उस कोई उसके तरफ से उसका कोई वली जो है इंसाफ के साथ लिखा दे। आजकल आप वकील से डॉक्यूमेंट करवा लेते हैं भाई, कई मामलों में ऐसा होता है कि हम वो लीगल लैंग्वेज जानते नहीं, हम लिख नहीं सकते, तो यहां इजाजत मिल रही कि आप कोई वकील को रख के वकील से लिखवा ले सकते हैं एग्रीमेंट। देखिए पूरा मॉडर्न तरीके की बात आ रही है, पूरा रिटन होना, कोई लॉयर भी लिख सकता, जिस पे हक है देने का जो गरीब है वो डॉक्यूमेंट लिखा है, बस तशहिदू शहीदैनी मिन रिजालिकुम, और तुम मर्दों में से दो गवाह ले लिया करो। ये भी आज आप कहीं भी देखिए, विटनेस नंबर वन, विटनेस नंबर टू, बराबर हर डॉक्यूमेंट पे दो विटनेसेस रहते। ये भी बड़ा लेटेस्ट चीज है, ये 1450 बरस पहले हमारे पास था, हम नोटिस नहीं करे, हम सिर्फ साइंस की बात करते, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के भी जो प्रिंसिपल्स थे ये भी कुरान में 1450 बरस पहले मौजूद थे कि दो दो मर्द गवाह ले लें। फइन लम यकूना रजुलैनी फरजुलुन वम्रातानी मिम्मन तरज़ौना मिनश शुहदाय अन तज़िल्लु अहदहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा अल-उख्रा, और अगर दो मर्द ना मिले तो एक मर्द और दो औरतें ले लें। उसकी वजह अल्लाह ताला बता रहे हैं कि गवाही में एक मर्द और दो औरतें ले लें, उसकी वजह बता रहे हैं कि अगर एक औरत से गलती हो जाए तो दूसरी औरत उसको वो गलती याद दिला दे। अब ये भी एक इशू बन गया, बीवियों पर ढागा डालते, देखे औरत की हालत। देखिए ये बहस का मौका नहीं है। एक चीज ये है, विरासत में भी औरत को आधा, मर्द को जो दुगना हिसाब है, इस वास्ते के माशी जो चीज है, मर्द कमाई का जिम्मा उसके ऊपर है, तो इसीलिए उसका हिस्सा ज्यादा रखा गया। सूरह निसा में हम पढ़ेंगे, बूढ़ों का हिस्सा औरतों का हिस्सा कम रखा गया है, क्योंकि बूढ़े बड़े और औरतें ज्यादा घर में रहा करती। अब फिर यहां एक वजह दे दी गई है कि भाई अगर एक औरत भूल जाए, कोई गलती करे, तो दूसरी औरत उसको याद दिला दे। यानी हो सकता है कि हाफिजे में बात ना रहे, अनइम्पॉर्टेंट रहे, उसमें भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे, उसको एक ज्यादा इशू बनाने का नहीं है। वला याबिश याबिश शुहदाउ इजा मा दऊ, और जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें, गवाही के लिए आ जाएं, ये भी हुक्म है। वला तसअमु अन तक्तबुहु सगीरतन और सगीरन और कबीरन इला अजलेही, और चाहे माल छोटा हो या बड़ा हो उसको लिखने से काहली मत करो। इस पर कई बहसें भी हुई हैं लोगों के साथ कि भाई अब देखिए यहां बात आ रही है इला अजली ही, एक वक्त मुकर्रर तक के ले रहे हैं आप, 10 रुपये ही ले रहे हैं, बोले कि मैं आपको कल दे दूंगा, आप लिख दीजिए, भूल जाते हैं। हुआ है ऐसे, कई मामले मेरे साथ भी हुए हैं, कई मामले ऐसे हुए हैं कि कब दिए थे, क्या दिए थे, इस तरीके की बात हो गई, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो फिर अल्लाह ताला उसका रीजन भी बता रहे हैं, ज़ालिकुम अक्सतु इंदल्लाहि व अक्वमु लिशहादती व अदना अल्लाह तरताबू। ये लिखने से फायदा ये होगा कि ये अल्लाह ताला के पास बड़े इंसाफ की चीज है, लिख लेना। दूसरी चीज ये है कि ये शहादत गवाही कायम करने में बड़ी अच्छी चीज है, गवाही कायम हो जाएगी, दो गवाहों के सामने कागज लिखा हुआ है। और तीसरी चीज यह है कि अब इसमें कोई शको शुबा नहीं रहता, मैं कब लिया था, कितना लिया था, बिल्कुल शको शुबा नहीं, हर चीज लिखी हुई है, कोई शको शुबा। बाद वक्त भूल जाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं। देखिए एक और एक बात है, अब जैसा उम्र को पहुंचते रहते आप तो कई बातें कुदरती तौर पर भूलते चले जाते आप। जवान आदमी को फिर भी याद रहता, फर्ज कीजिए बूढ़ा आदमी कोई ले ले, उसको याद ही नहीं है कब गया था मैं, अजी हजरत आप बच्चे की तालीम के वास्ते लिए थे आप, क्या है कि बाबा याद नहीं, हालांकि उसकी नीयत खराब नहीं है, मगर उसके हाफिजे में वो चीज मिट गई। ऐसे कई, मैं आपसे एक मिसाल दिया था कि एक अम्मा जिनकी उम्र तकरीबन 100 बरस हो गई थी, उनका बेटे 70 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, जाके अम्मा को बोले आपके बड़े बेटे का इंतकाल हुआ, बोले तो नाम से पहचान रहे नहीं, कौन पूछ रहे हैं, अजी आपके बड़े बेटे फलां फलां, क्या है कि मैं मेरे को नहीं मालूम, हाफिज़े क्या यह हाल हो जाता। तो लिख लेने में क्या है, बता दिया आप, देखिए लिखा हुआ है तो लिख लिया करो, ये बेहतरीन चीज है। इल्ला अन तकूना तिजारतन हाजिरतन तुद्रीनुहा बैनकुम, सिवा इसके कि तिजारत हो जो तुम हाथ से एक दूसरे की मौजूदगी में बेचते हो खरीदते हो। अभी मैं जाते जाते समझिए एक साबुन की बट्टी खरीदा, अब उसके वास्ते मियां जरा दो गवाएं आओ मैं साबुन की बट्टी, ऐसी तकलीफ भी नहीं डाले आपको। मैं नहीं बोले, वो कुरान में है गवाएं आओ, अल्लाह ताला को मालूम है हम लोगों की जहनियत मालूम है, इसलिए ऐसी तकलीफ भी नहीं डाले। बोले नहीं, ये जो तिजारत है इसमें गवाह की जरूरत नहीं है, बिजनेस में पैसे दो माल ले लो चले जाओ। फलैसा अलैकुम जुनाह अल्लाह तक्तुबहु, अगर ऐसे कारोबार में अगर तुम ना लिखाओ, जैसा दुकान से साबुन खरीद रहे कर रहे हैं, तो अगर ना लिखाओ तो कोई गुनाह नहीं। वह अशहदु इजा तबाया तुम, अगर तुम कारोबार करो तो वो लिख लिया करो। अब यहां बई तिजारत रिबा सदखा, ये चार अल्फाज में बिल्कुल डिफरेंस है। तिजारत क्या है? हैंड टू हैंड डीलिंग जो है, सूरह जुमा में एक्सप्लेन कर दिया गया कि जब तिजारत वगैरह कुछ देखते हैं तो सब छोड़ के चले जाते हैं, कुछ सामान बिकने आया था खुतबा छोड़ के चले गए सामान देखने के लिए। भाई कोई भी कारोबार, अब जैसा मैं घर खरीद रहा हूं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई 15 लाख रुपये लो आपका घर मेरा चलो खिस्सा खत्म, नहीं हो सकता है। तो ये 1450 बरस पहले उसूल बताया गया कि ऐसे कारोबार लिख लिया करो, वहां भी गवाह होंगे फिर आप कि भाई मैं आपसे फलानी इतनी प्रिंट एरिया है या नक्शा है ले रहा हूं, या कार खरीद रहे हैं आप, आपकी कार ला लिया मैं, आप बोले आज से आपकी मेरी, चलो पुलिस वाला पकड़ा तो किसके नाम पे है समझ में, एक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जा रहा चौथा। तो इस चीज को दूर करने के लिए वला यूजार कातिबुन वला शहीद, तो ना लिखने वाले को कोई तकलीफ दी जाए और ना गवाह को कोई तकलीफ दी जाए। देखिए इसके खिलाफ कुछ साल पहले कोर्ट में गवाह को कत्ल कर दिया गया था, पेपर में आया था, ये होने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला ने 1450 बरस पहले बता दिया कि देखो गवाह को भी तकलीफ मत, इन तफ अलू व इन न हो फुसुखुम बिकुम, और अगर तुम ऐसा करो यानी कातिब और गवाह को जो है तकलीफ दो तो ये जो है नाफरमानी है तुम्हारे तरफ से। वत्तखुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर के ये गुनाह से बचो, नेक अमल करो। वो युअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शयइन अलीम, और अल्लाह ताला तुमको तालीम देता है, सिखाता है, एक एक चीज तुमको सिखाता है, और तू पहले तो तुम जानते ही नहीं थे कोई चीज, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, हर चीज का इल्म रखता है, यानी पास्ट का इल्म है, प्रेजेंट का इल्म है, फ्यूचर का इल्म है, बोले तो इल्म है, छुपाए तो इल्म है, दिल में क्या है इल्म है, हर चीज का आ गया किसी को जो है। अब उस इल्म में से अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं जितना चाहते हैं दे देते हैं, इल्म तो अल्लाह ताला का है, उनकी मिल्कियत है, हर चीज ही उनकी मिल्कियत है। वह इन कुंतुम अला सफरिन और लम तजिदु कातिबन फरीहानुम मखबूजा, और अगर तुम सफर पे हो और तुमको कोई लिखने वाला ना मिले तो फिर कोई चीज रहन रखा दो। जैसा भाई आपको घड़ी पहने में बहुत कॉस्टली घड़ी है, तो आप बोले कि साहब ये घड़ी रख लीजिए और मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 500 रुपये लाके जो है घड़ी ले लूंगा, तो रहन भी जायज है हमारे पास, रहन रखा के भी जो है खर्च ले सकते हैं। इसी किस्म की चीजें जो हो रही थी, मुझे जहां तक मालूम है कि मुसलमान औरतें जो है जाके अपना जेवर वगैरह दूसरी जगह रहन रखा के पैसा ले रही थी, तो यही बैकग्राउंड में बैतुल माल खोले थे हमारे पास, जो शहर में जो है बैतुल माल तूर बैतुल माल जो खुला वो इसी इसमें था कि लोग झिड़क रहे हैं, यानी 12,000 के नेकलेस के ऊपर आपको एक 500 रुपये पकड़ा दे रहे हैं, लोगों को सोने की कीमत नहीं मालूम, इस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा, जेवर जो है हर्राज हो जा रहा है, जेवर चले जा रहा है, पूरी दौलत हम लोगों की जो है इस तरीके से गरीब मुसलमान जो थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो इस नीयत से जो है खोला गया कि वहां आप रहन रखा के जो है चीजें ले सकते हैं जिनको जरूरत होती है। फ इन आमिना बाज़कुम बाज़न फल युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वल यत्तखिल्लाहा रब्बुहु, और अगर तुम एक दूसरे पे भरोसा करते हो तो जिस पे भरोसा किया जाए वो अपनी अमानत जो लिया है खर्च वो वापस कर दे, और फिर अल्लाह ताला जो उसका पालने वाला मालिक है उससे डर। बाज़ दोस्ती ऐसी रहती कि आपको उसकी भी जरूरत नहीं रहती, बाद मामलों में ऐसा रहता है कि नहीं नहीं अब आपसे क्या ले, भरोसा है आपके ऊपर, आप तो ना कातिब। देखिए किस शर्त से, सफर में हैं आप, सफर में हैं और कातिब नहीं मिल रहा लिखने के लिए, कंडीशन है ऊपर जो आयत इन कुंतुम अला सफरिन व लम तजिदु कातिबन, तो रहन रखा सकते, और अगर ऐसा है कोई कोई भरोसा करता है तो अब जैसा भाई बंबई में मेरे कोई बचपन के दोस्त थे, वहां चले गया, खर्चा हो गया, पैसे निकल गए, अब कुछ रखाने के लिए भी नहीं है। तो अब उन्होंने बोले कि नहीं भाई आपका आपका क्या मामला है, इंशाल्लाह मैं ये रखिए, आप ये पैसे 2000 रखिए, जाने का खर्चा जो भी होगा। तो यानी सफर में हो और लिखने वाला ना हो तो ये इजाजत है। वला तक्तुमु शहादा, और तुम गवाही को मत छुपाओ, ये हुक्म है। वह मई यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन कल्बुह वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम। और अगर जो भी शहादत को गवाही को छुपाया तो वो अपने दिलो दिमाग का जो है गुनाहगार हो गया। देखिए छुपाने से क्या हुआ, वो अंदर की चीज है, वो दिल में छुपा लिया, दिमाग में छुपा लिया, तो दिलो दिमाग का गुनाहगार हो गया। अब उसकी सजा उसको मिलेगी, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसका इल्म रखता है। अब ये आयत पहली यहां की जो के जरा सहाबा पे बड़ी शाख गुजरी थी, बड़े परेशान हो गए थे आयत नाजिल होने के बाद। लिल्ला ही माफी समावाती हो माफी लर, जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है अल्लाह का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा आपका कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। मिम्मा रजखना हूं यूं फेकून, हमने जो दिया है उसमें से खर्च करो, ना जिंदगी मेरी है, ना हिदायत मेरी है, ना समझ मेरी है, अखल इल्म कोई चीज मेरा नहीं है। जो कुछ आसमानों और उसमें हम आ जाते ना, आसमान और जमीन से हटे हुए तो नहीं है, जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो अल्लाह का है। वह इन तुबदू माफी अनफुसिकुम और तुख्फुहु युहासिबकुम बिहिल्ला, अगर तुम जो तुम्हारे नुफूस में है अंदर, तुम्हारे शऊर में, तुम्हारे दिलो दिमाग में अंदर कोई चीज है, उसको तुम चाहे जाहिर करो चाहे छुपाओ, अल्लाह ताला उसका हिसाब तुमसे लेगा। देखिए हम लोग इजी ले रहे हैं उसको, साहबा हिल गए थे साहबा के दिलो दिमाग में क्या क्या चीजें जाती हैं, इसका हिसाब कहां से देंगे हम। कई गलत ख्यालात आ जाते हैं, उस पर भी पकड़ होगी तो कैसा होगा। तो फिर एक हदीस से इन्फॉर्म किया गया है कि देखो वसवसे तुम पर माफ किए गए हैं जब तक के तुम उस पर अमल ना करो, क्योंकि ये शैतान की तरफ से है, उसमें भी जवाब दे दिया गया शैतान की तरफ से। तो अब हमारे को भटकाने वाले दो चीजें हैं, एक शैतान है वो भटकाता है, कुरान से साबित है। एक हदीस में एक दुआ है, नाउजुबिका मिन शुरूरी अनफुसिना व मिन सयाती आमालिना, यानी हम आपकी पनाह में आते अपनी नफ्स की शरारत से और हमारे अमल की बुराई से। तो मतलब यह हुआ कि शैतान के अलावा भी नफ्स इंसान को गलत जगह पे लेके जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आप अपने हर बुरे अमल के लिए शैतान को ब्लेम करें, आपके नफ्स में भी जो है पहचान दे दी गई है, अलहमाहा फुजूरहा व तखवाहा, ये बात आ गई है। तो आप भी ये समझ लें कि नफ्स की भी जिम्मेदारी होती है। तो अब ये जब वसवसे माफ कर दिए गए तो एक चीज जो बच जाती है वो समझ में आती कि उस जमाने में ये मक्के के काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था, प्लान बनाया था, इंप्लीमेंट नहीं कर सके, उसे हिजरत हो गई, चले गए, आंखों पे धूल आ गई, देख नहीं सके, मौजिजाना तरीके से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिठाए अपने बिस्तर पे, उनकी आंखों के सामने से चले गए, कोई नहीं देखा, कत्ल नहीं कर सके। लेकिन कत्ल का प्लान तो था इनके जहन में। एक चोर है, चोरी के लिए निकला, पूरा सामान चोरी का लेके निकला, अब एक गेट में कूदना चाह रहा था, पुलिस वाला आ गया नाइट ड्यूटी का, तब अलग ऐसी सीटियां मारते हुए निकल गया होगा, चोरी नहीं कर सका, मगर नीयत तो चोरी की थी उसकी। देखिए इंसाफ की बात हो रही, नीयत तो चोरी की थी, तो क्या उससे पूछनी होगी कि तू चोरी पे क्यों गुजारा करता था, मेहनत क्यों नहीं करता था। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किए थे, क्या उनसे पूछनी होगी कि तुमने कत्ल का इरादा क्यों किया था, अगर हम नहीं बचाते तो तुम कत्ल कर देते थे, हम बचाए उनको, आंखों में धूल झोंक दिए, अंधे हो गए, उनके सामने से निकल गए। तो अब यह मालूम होता है कि हमको लेसन क्या मिलता है इससे, तो तारीखी पस मंजर हो गया, एक इमेजिनरी इशू हो गया। हमको इससे लेसन यह मिलता कि बुरी प्लानिंग अगर हम करें तो अल्लाह ताला इसकी पकड़ेंगे। अब बुरी प्लानिंग क्या होती, अरे बहुत दिन हुआ हम यहां कार्ड्स खेल के, आज क्लब को चले जाएंगे खेलेंगे, प्लान हो गया हो, पूरा प्लान हो गया, अब इत्तेफाक से आप वो चिचा जान आ गए, अब बैठ गए उनके बातों में नहीं जा सके, तो प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो वो तो पकड़ होगी आपकी बराबर, वो तो हिसाब पकड़ क्या हिसाब होगा उसका। तो अब ये मतलब हमको मैसेज ये मिल रहा है कि कोई बुरी चीजें ना सोचो ना प्लान करो। शैतान के वसवसे आए तो लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, कई दुआएं आई हैं वो पढ़ के जो है पाक हो, और कोई बुरी प्लानिंग जो है अपने तरफ से मत करो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फयुग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं मग़फ़िरत करते हैं, गुनाहों की सजा से बचा देते हैं, जिसको चाहते हैं अज़ाब देते हैं। ये देखिए मग़फ़िरत अज़ाब के ऑपोजिट आया, ये मज़मून बिल्डअप करना है क्योंकि आखिरी आयत में इसको अच्छा समझना है कि मग़फ़िरत और उफू में क्या फर्क है। यहां ये क्या है फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, तो अज़ाब के ऑपोजिट मग़फ़िरत आया, जैसा रिबा के ऑपोजिट सदक़ात और ज़कात आए हैं वैसा अज़ाब के ऑपोजिट मग़फ़िरत। अज़ाब का मतलब क्या है, तकलीफ देना, सजा देना। मग़फ़िरत का मतलब क्या होना, सजा से बचा लेना। सजा से बचाने के दो तरीके हैं, गुनाह ही ना करने दें, सजा से बच गए, वो भी मग़फ़िरत है। अच्छा गुनाह हो तो सजा ना दें, वो भी मग़फ़िरत है। तो अब ये जो बुरी प्लानिंग करा है आदमी, फर्ज कीजिए वो महसूस करके ऐसी बात सुन लिया और तौबा कर लिया कि या अल्लाह अब के इंशाअल्लाह मैं जो है आपने चाहा तो मैं बुरी प्लानिंग नहीं करूंगा, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको वो बुरी प्लानिंग की सजा से बचा ले, गुनाह की सजा से बचा ले, गुनाह से बचा ले आगे, और जिसको चाहे वो अजाब दे जो तौबा नहीं करा है ऐसी हरकतें करता है। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन क़दीर, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। देखिए ये एक चीज अपनी परेशानी के वक्त अपनी मजबूरी के वक्त ज्यादा याद कर, इन अल्लाह अला कुल्ली शयइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे क़ादिर है। दुआ करा हूं मैं, बाज़ वक़्त ये होता है कि कबूल होती कि नहीं होती कि ऐसी दुआ है, तो इन अल्लाह अला कुल्ली शयइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज पे वही क़ादिर है, वो अगर चाहे कबूल। अब जैसा सूरह मोमिन में वो जो मोमिन थे साहब मूसा अलैहि सलाम के जमाने में, उनकी बड़ी प्यारी दुआ है उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूं, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को देखने वाला है। तो ये ईमान की कैफियत है, यहां भी वही बात है कि हर चीज पे अल्लाह ताला खादिर है। अब ये आखिरी दो आयतें हैं और इन आयतों का कुछ बैकग्राउंड है। एक तो ये है कि सोते वक्त ये दो आयतों को पढ़ने का मसनून बताया जाता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सोने से पहले ये दो आयतें पढ़ लें, उस ये दो आयतें उसके लिए काफी हैं। अब ये काफी किस सेंस में है, हो सकता है हिफाजत का है क्या है, वो इंटरप्रिटेशन करना मुश्किल है। फिर उसके बाद में कहा, एक हदीस में बात आई है कि अल्लाह ताला ने दो नूर नाजिल किए हैं, एक सूरह फातिहा और सूरह बकरा के ये आखिरी दो आयत। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके का नूर है हमारे लिए इंशाल्लाह इंटरप्रिटेशन में। फिर तीसरी एक रिवायत में आया है कि मेराज जो हाल ही में लास्ट संडे गुजरी है, मेराज के मौके पे ये दो आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफतन दी गई थी। भाई इतनी दूर से आए आप, होता ना भाई कोई बाहर से आए वो आपके लिए तोहफा लाए, हम उनके यहां से भाई चलो शर्ट पैंट पीस कुछ भी खरीद के दे दिए, तो ये तोहफे जो है नमाज मिली तोहफे में, ये उसमें ये दो आयतें भी थी। तो अब इन आयतों को अच्छी तरीके से समझना है, इनके तीन पार्ट्स हैं, एक जगह मैटर ऑफ फैक्ट है, उसके बाद में अल्लाह ताला का जवाब है, फिर दुआ है। आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैही मिन रब्बिही वल मोमिनून, यानी अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाते हैं उस चीज पर जो अल्लाह उनके पालने वाले मालिक ने नाजिल की है, और मोमिनून भी ईमान लाते हैं। अब देखिए अल्लज़ीना आमिनू और मोमिनून में क्या फर्क है, वो लोग जो ईमान लाए कभी भी बदल भी सकते थे। मोमिनून एक नाउन हो गया, वो डिफाइन हो गया, या अय्युल लज़ीना कफरू, वो लोग जो कुफर कर रहे हैं, कुल या अय्युल काफिरून, जो पक्के काफिर हैं, डिसाइड हो गया है उनका कुफर। तो अब ये जो मोमिनून ये ईमान ला चुके हैं, इनकी कैटेगरी है मोमिनून की मोमिनीन की, تو یہ لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں, قرآن پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کل آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, اور یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, اس کے فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, ان کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے, جنت کا راستہ بتایا گیا ہے کتابوں میں, اور ان کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ رسول تمام جو ہے ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم ہی لوگوں میں سے چنے تھے کہ ہم کو جنت کا راستہ بتائیں اور دوزخ کے راستے سے روکیں. اب یہاں آخرت کا ذکر کتبی بھی میں تقدیر بھی آ جاتی, کیونکہ لوح محفوظ بھی اس میں آ جاتی تمام کتابوں میں. اب آخرت کا, اب کئی جگہ آپ دیکھیں گے آمنا باللہ والآخرہ, خالی دو آئٹمز آئے, تو مضمون کے لحاظ سے جو ہے ان چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. تو لا نفرق بین احد من رسولہ, اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ تمام رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا فرق کرنے کا. ایک سیرین کرسچن تھے یہاں گن فاؤنڈری میں, تو وہ اسلام قبول کرے تھے, اس سے پہلے میں آپ سے بتایا, ان کا نام چیکو تھا. تو ان کے اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ انہوں یہ بتائے تھے کہ صاحب قرآن بڑی کاسموپولیٹن کتاب ہے, یو آر فورس ٹو بلیو ان آل دا میسنجرز آف اللہ, ہمارے ویسا نہیں ہے وہ. اب آپ سوچ کے دیکھیں, ہم لوگ اس پہ غور ہی نہیں کرتے, تمام رسولوں پہ جو ہے ایمان لاتے. اور پھر بڑی پیاری بات بولے تھے وہ, رضوان القاسمی صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے تھے, تو بڑی پیاری بات بولے تھے. کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بولے صاحب ان کو فلانی جگہ جاؤ, بولے چوک کے پاس وہ نام لکھا دینا, نیا نام دیتے. تو یہ بولے دیکھیے میرا نام چیکو ہے, یہ ہبرو میں یعقوب, عربی میں یعقوب ہے, انگلش میں جیکب ہے, اور ہبرو میں جو ہے چیکب ہے. ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ یہ تینوں میں سے نام کی بنیاد پہ کس کی مغفرت ہوں گی, تو پورے نیچے منڈی ڈال کے بیٹھ گئے. تو بات سمجھنا ہے کہ نام سے کچھ ہونے کا نہیں ہے, کام سے ہونے کا ہے. تو یہاں یہ بات ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ کسی رسول میں ہم فرق نہیں کرتے کہ بھئی فلاں رسول بڑے تھے, فلاں چھوٹے تھے. ہمارے تحاریر میں یہ باتیں ہوتی ہیں, قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے. بات کیا, ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں باتوں. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, کائی کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ کون بولا آپ کو کمپیئر کرو, جب قرآن میں بات آ رہی ہے کہ ہم آپ کے رسولوں میں کوئی میں فرق نہیں کرتے. ایک بات یاد رکھنا ہے کہ شریعت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرتے ہیں, فرق کسی میں نہیں کرتے. کیونکہ قرآن کے آنے کے بعد, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی. یہ رائٹ شریعت, اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ آپ کو, کہ بھئی ایک زمانے میں یہاں ہرشا وردھنا وغیرہ کی حکومت تھی, ہندو پیریڈ تھا, پھر مغل دور تھا, اس کے بعد میں برٹش رول رہا, اب آزادی کا رول ہے. اب ہم ایک آزاد ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے, ہم بولیں گے نہیں صاحب وہ ہرشا وردھنا کا وہ فلانا رول تھا, میں تو اسی پہ چلوں گا, تو کوئی بھی نہیں مانے گا. وہ مغل دربار میں یہ رول چلتا تھا, کوئی بھی نہیں مانے گا. ایچ ایچ کے زمانے میں ایسا تھا نہیں. اب جو کرنٹ رول ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. اس طریقے سے جو کرنٹ دین ہے اس وقت, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام ہے. تمام نبی اسلام لے کے آئے, تو ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرتے ہیں. اب اس کے بعد میں جو ہے ایک اور ایک ڈکلریشن ہے, وہ خالو, یہ دعا ہے سمجھے, وہ خالو ڈکلریشن ہے, وہ خالو سمعنا و اطعنا. کہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں, یہ جو مومنین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. سنا کیا؟ قرآن سنا. اطاعت کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یعنی ڈکلیئر کر دیے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنون تھے وہ ڈکلیئر کر دیے کہ ہم نے قرآن سنا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, ان کا کہنا مانا. غفرانک ربنا و الیک المصیر, اے ہمارے پالنے والے مالک, ہماری جو ہے گناہوں سے بچا لیجئے. غفرا, گناہوں سے بچا لیجئے, گناہوں کے سزا سے بچا لیجئے. وہ الیک المصیر, اور ہمارا ٹھکانہ, ہماری منزل تو آتی ہے, الٹیمیٹلی یہی دروازے سے جانے کا ہے, ایک ہی راستہ ہے. یعنی ہم سب آپ ہی کی طرف آئیں گے, ہمارے ہم سب کی منزل آپ کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکلریشن آ رہا ہے. دیکھیے, ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہو گیا, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکلریشن آ رہا ہے. دو اصول بتائے جا رہے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی شخص پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا. اصول, اگر میں 10 kg اٹھا سکتا ہوں تو میرے پہ 10.5 kg کا بار نہیں ڈالا جائے گا. ہم بلا وجہ پکارا بہت کرتے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے, سبھی کرتے, ہماری جتنی استطاعت ہے اتنا بار ڈالا جاتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ استطاعت سے بڑھ کے بار نہیں ڈالتا. ہم نہیں ڈالتے, یہ کھمبا جتنا لوڈ لیں گا اتنا ہی بار ڈالیں گے اس کے اوپر, یہ ٹیبل جتنا لوڈ لیں گا اتنا ہی بار ڈالیں گے. اگر آپ کھمبے کے بجائے ٹیبل پہ ٹیبل ٹیبل پہ ٹیبل رکھ کے اگر چھت کھڑا کرتے تو پورے ٹیبل میں گر جاتے تھے, تو ٹوٹ جائیں گے ہم لوگ. ہماری استطاعت سے زیادہ بار اگر اللہ تعالیٰ ڈالیں تو ہم ٹوٹ جائیں گے. تو ایک اصول ہے کہ ہماری استطاعت سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے, اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, ہماری بھی استطاعت نہیں ہے. پھر دوسرا اصول بتایا ہے کہ لہا ماں کا سبق وہ علیہ مک کا سبق, ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ ہم ہی کو ملے گا, ہم جو برائی کرتے ہیں, جو بری کمائی ہے وہ ہمارے خلاف ہی ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور کے لیے نیکی نہیں کر سکتے, کسی اور کی نیکی ہمارے پاس نہیں ڈالے جائے گی سوائے والدین کے, کہ جو اچھی اولاد چھوڑ کے گئے ہیں ان کی عبادت, ان کی دعائیں, مغفرت وغیرہ والدین کے بھی اکاؤنٹس میں جو ہے لکھا جائے گا, کیونکہ انہوں نے محنت کی تھی اپنی اولاد پر. تو تم جو نیکی کرو گے قرآن اور حدیث کے مطابق چلو گے تو اس کا صلہ بھی تمہیں کو ملے گا, اور اس کے خلاف جو چلو گے تو پھر وہ کمائی بھی جو ہے تمہارے خلاف کام آئے گی. اب یہاں دیکھیے, اب یہ دعا ہے, ہم نے سورہ فاتحہ میں ایک دعا کی تھی, اہدنا صراط المستقیم, کہ ہم کو سیدھے راستے پہ بتائیے, پھر الیبوریٹ کر کے بھی بتائے کہ صراط الذین انعمت علیہم ایسوں کے راستے پہ چلائیے جس کے آپ نے انعام کیا ہے, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ایسوں کے راستے پہ مت چلائیے جس پہ آپ کا غضب اور غصہ تھا. جیسا خیرات سے اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور ربا سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے, غضب ہے, اس طریقے سے جو ہے جن لوگوں کو آپ نے ہدایت دی تھی اس پہ ان کا آپ کا انعام تھا ان پہ, اور جو جن پہ غضب تھا اور جو بھٹک گئے تھے, ایسے کوئی راستے پہ مت چلائے. اب اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں, دعا قبول ہو گئی. ایک صاحب بڑا اچھا بولے تھے, صاحب یہ بغیر سمجھے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے نماز میں, اگر دعا قبول ہو گئی تو کیا ہوئیں گا, سوچ کے دیکھیے تھوڑی دیر. صراط المستقیم پہ آ گئے, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسی زندگی گزر رہی, جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اسلام کے لیے, دعا قبول ہو گئی. تو بولے وہ تو نہیں سمجھتے, سمجھ کے دل سے دعا نکلی قبول ہو گئی, تو جو ہے ایسا ہم لوگوں کا حال ہے. تو اب یہ جو اہدنا صراط المستقیم کی دعا مانگے ہم, اب یہ راستے پہ چلتے ہوئے کچھ ہم سے غلطیاں ہو جا سکتی ہیں, تو اب یہ غلطی کے بارے میں بھی سورہ مائدہ کی 9ویں 10ویں آیت پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن پہ عمل کرنا بتایا اس طریقے سے جس نے عمل کیا, اس کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے, دوسروں کے لیے مغفرت نہیں. تو اب وہ صراط المستقیم پہ چلتے ہوئے غلطیاں ہو گئیں, اب دعا مانگ رہے ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے ہمارے پالنے والے مالک, یہ راستے پہ چلنے میں ہم سے جو بھول ہو گئی ہے, جو خطائیں ہو گئی ہیں ان انٹینشنل, اس کو معاف کر دیں, مت پکڑیے اس کو. دیکھیں یہ دو امور جو بتایا, میں حدیث کی اوتھینٹیسٹی بتا رہا ہوں کہ کنیکشن کیسا ملتا, اگر ہم غور کرتے اللہ تعالیٰ بٹھا دیں تو کنیکشن کیسا ملتا, کہ آپ ادھر ہدایت کی دعا تھی وہ بھی نور ہے, اور اس دعا کے کنٹینیوشن میں وہاں قرآن شروع ہو رہا ہے, سورہ بقرہ یہاں ختم ہو رہا ہے. تو اب یہاں آپ دعا کریں کہ یا اللہ, یہ صراط المستقیم پہ چلتے ہوئے اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے, اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے, نا دانستہ ان انٹینشنل کوئی خطا ہو گئی ہے, تو ہم کو مت پکڑیے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اور اے ہمارے پالنے والے مالک, ہم پر اتنا بوجھ مت ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا تھا. اب جیسا جیسا ٹائم گزر رہا ہے پہلے والے زیادہ ان کی اہمیت بڑھتے چلے جا رہی. کیوں؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مکے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے
उनको रेत पे भी खींचा गया, गरम गरम रेत पे, अंगारों पे खींचा गया, यानी उनकी चर्बी पिघलकर आग बुझी। बेटे बेटा और बेटी के प्रेजेंस में मां को शहीद किया गया, और वो भी बड़ी बरहना तरीके से जो है उनका मामला हुआ। तो ये तमाम तकालीफ उठा, वो लोग भी ये दुआ मांग रहे थे कि पहले लोगों पे जैसा आपने वो बोझ डाला था वैसा मत डालिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम पे क्या बोझ पड़ा है, तुमसे पहले जो कौमें थी उनको आरों से चीर दिया जाता था लेकिन वो जो है तौहीद से नहीं हटते थे। तो वो बोझ सहाबा नहीं उठाए, सहाबा का बोझ हम नहीं उठा सकते। अगर कोई खाली इतना ही बोले देखो मियां तुम इस्लाम से हट जाओ नहीं तो मैं पिन चुबाता हूं, बोले तो हम हट जाते, हम लोगों की इतनी कमजोर ईमान है। या कोई बोले हजरत आप नमाज ना छोड़ो मैं आपको तरक्की देता हूं, तो आप घर को आके बीवी बच्चों को बोलेंगे भाई अल्लाह गफूर और रहीम है, मैं तो कल से जाना छोड़ दे रहा हूं, इस वास्ते कि तरक्की मिल रही मेरे को, तनख्वाह बढ़ जा रही। तो ये हम लोगों का मामला है। तो यहां ये दुआ है कि या अल्लाह पहले यानी पहले लोगों पे जितना आपने बार डाला था आजमाने के लिए उतना बार हम पे मत डालिए। रब्बना वला तुहमिलना मा ला ताकत लना बिही, और अरे हमारे पालने वाले मालिक हम पे इतना बार मत डालिए जिसको बर्दाश्त करने की हमें ताकत ना हो। अब एक बात नोट कीजिए, यहां अल्लाह ताला पहले ही बोल रहे हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसा, उसके बावजूद दुआ मांगो बोल रहे हैं। मैं किसी नफ्स पे उसकी इस्तेताअत से बढ़ के बार नहीं डालता, फिर भी आप बोल रहे हैं कि रब्बना वला तुहमिलना मा ला ताकत लना बिही। इसकी मसलहत हम एंड पे समझिए कि हम पे जितनी इस्तेताअत नहीं है उतने उतने आप बार मत डालिए। वफ़ू अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना, अब यहां समझिए ये फर्क तीनों का। देखिए अफू का मतलब मिटा देना, माफ कर देना, मिटा देना, और गफरा का मतलब किसी चीज से बचा लेना। मैं फिर दोहरा देता हूं कि जब नुज़ूल कुरान हो रहा था तो उस वक्त गफरा को कैसा समझा जाता था, यानी औरतें सर पे तेल डालती थी तो उस पर कपड़ा रख लेती थी ताकि ओढ़नी खराब ना हो, तो वो जो कपड़ा तेल को बचाने से ओढ़नी को बचाने के लिए रखा जाता था उसको अलगिफारतू बोलते थे। फिर ये जो फौजी थे अपनी टोपी के नीचे लोहे की जाली पहनते थे कि तलवार वगैरह बर्छे का मार उस पर ना लगे हिफाजत के लिए, तो उसको भी अलगिफारतू बोलते थे। तो मगफिरत के माने किसी चीज से बचा लेना, अजाब से बचा लेना। तो बचाने के दो तरीके हैं, एक तो मेरे से गलती हो गई आप अफू हैं माफ कर दिए सजा से बचा लिए, एक हो गया। एक चीज बचाने की ऐसी है कि आप मेरे से गलती होने ही नहीं दिए भाई, मलेरिया हुआ क्विनिन खाओ बोले डॉक्टर साहब उसका इलाज हो गया। एक प्रिवेंशन यह है कि कुछ ऐसी दवा बताए कि आपको मलेरिया हो ही नहीं सकता, तो यह मगफिरत है। मगफिरत क्या है कि गुनाह होने से भी बचा लेना, अगर गुनाह हो गया है तो उसकी सजा से बचा लेना। अब यहां जो सारे कुरान में पहले अफू आया बाद में गफूर आया, आप पूरा निकाल के देख लीजिए, पहले अफू आया बाद में गफूर आया। अब इसकी मिसाल ऐसी ले लीजिए कि भाई यहां कोई साहब पहली दफा आए, अल्लाह का फजल है अल्लाह का कलाम है, मुतासिर हो गए, बोले नहीं भाई अब जिंदगी बदलना पड़ेगा, ये बहुत हो गया, अब दुनियादारी बहुत हो गई, अब जिंदगी बदलना पड़ेगा, अल्लाह के रास्ते पे आना पड़ेगा। तो इनका पहला काम क्या होगा, क्या करेंगे, ये अल्लाह से मांगना पड़ेगा दुआ, क्या दुआ करेंगे कि या अल्लाह मेरे पिछले गुनाहों को मिटा दे। पहला स्टेप, इतनी जो गलतियां कर रहा हूं पीछे पहले उसको मिटा दे, चलिए आमीन कबूल होगी। दूसरा स्टेप, या अल्लाह आने वाले गुनाहों से बचा लीजिए, चलिए आमीन अल्लाह ताला कबूल कर लिए। देखिए दो कंडीशंस हो गए, पिछले गुनाह पूरे मिट गए, आने वाले गुनाहों से अल्लाह ताला ने बचा लिया, अब कोई स्कोर ही नहीं हुआ जन्नत में जाने का। एक बैट्समैन है क्रीज पे खड़ा हुआ है हर गोले को रोक रहा हूं, भाई स्कोर करेंगे तो जीतेंगे ना। वरहमना, रहमत क्या है, बेनिफिशेंस फायदा पहुंचाना, फायदा पहुंचाइए, कैसा फायदा पहुंचाइए,
कि हमसे नेक अमल करवाइए. क्या नेक अमल कराइए बाद में बात आ रही. तो अब इसकी एक मिसाल आप लीजिए कि भाई आपके पास एक टेप वीडियो टेप है और उस पर आपके पास गजलियात रिकॉर्डेड है. अब यहां सुने आप, सुन के बोले नहीं भैया बेकार है. पहले क्या करें आप, जाके टेप मिटा दिए, ये अफू है. उसके बाद में वो टेप पे कुरान रिकॉर्ड करें आप, तो अब ये क्या है, ये यानी आप सजा से भी बच गए और फिर एक फायदे की चीज आप रिकॉर्ड कर लिए. जब भी सुनेंगे इंशाल्लाह उसकी जो है आपको उससे हिदायत हासिल करेंगे. तो अफवाना मिटा दीजिए, वक्फिर लेना और हमारे जो है आगे आइंदा आने वाले गुनाहों से बचा लीजिए. वरहमना, हम पे मजीद रहमत कीजिए कि हमको नेकी की तौफीक दीजिए. अंता मौलाना, आप हमारे मौला हैं, आप हमारे गार्डियन हैं, आप हमारे दोस्त हैं. अब यहां थोड़ी रुककर हमारी हमारे कल्चर पे नोटिस करना है. देखिए मौलाना, अंता मौलाना, मौलाना अल्लाह ताला है. मैं पहले दुआ में दुरूद शरीफ जो पढ़ता था उसमें मौलाना पढ़ता था. तो कोई एक साहब, अल्लाह अच्छा रखे, वो आके मुझे बोले कि साहब ये अंता मौलाना दुरूद शरीफ में जो है कई उलमा ऑब्जेक्ट करे हैं, अंता मौलाना नहीं पढ़ने का है, कि वो अल्लाह ताला के लिए मौलाना इस्तेमाल हुआ, मौलवी मौलाना. अब देखिए हमारे पास हैदराबाद का जो तरीका है, हर तालीम याफ्ता जो दीनी आलिम है उसको हम मौलाना बोलते हैं, मौलाना मौलवी, यानी मेरे वली, मेरे गार्डियन. मेरा गार्डियन तो वो है. तो यहां की तहजीब कुछ ऐसी रही, पहले खतों में लिखते थे कि वालिद साहब किबला और काबा, उर्दू में खत लिखते थे किबला और काबा, नहीं तो बदतमीजी रहती थी. यानी काबा और किबला किधर, जिधर सिजदा किया जाता है, तो वालिद को जो है मस्जिद बना दिया, एक चीज थी. बादशाहों को बोलते थे जहां पना, सारे जहां को पना देने वाला, जिल्ले इलाही, अल्लाह ताला का साया, नाउजू बिल्ला, अल्लाह माफ कर, शाहजहां, सारे जहां का बादशाह, आलमगीर. क्या हुआ, ऐसा मार खाए अभी नहीं उठ सक रहे हैं, अभी हमको समझ नहीं आ रही कि जो है किसको किधर लेके जाके बिठा दिया. तो ये बात हमारे जहन में रखना है कि मौलाना अल्लाह ताला के लिए, हमारा मौला अल्लाह ताला है, गार्डियन है. अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो आप हमको काफिरों की कौम पे जो है मदद फरमाइए, काफिरों की कौम पे मदद फरमाइए. अब ये कैसी मदद फरमाइए, एक तो काफिरों के जुल्म से बचाइए, एक मदद तो ये होती है कि काफिरों के जो जुल्म हो रहे हैं वो जुल्म से बचाइए. दूसरी चीज ये होती है कि मुसलमान काफिरों के पैसे जायदाद के पीछे नहीं रहता. मुसलमान का शौक ये रहता है कि भाई दूसरे लोग भी ईमान ला लें जैसे हम लाए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, जहां तक मेरा अपनी रीडिंग है, कि उनकी कोशिश सिर्फ ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल करें. उसका सबूत यह है कि हज्जतुल विदा में 1,25,000 सहाबी सिर्फ हज कर रहे थे. इस्लाम कितने कबूल कर रहे थे कोई गिनती नहीं. आज ही के जमाने में 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर इस्लामी हुकूमत थी. तो यहां मालूम होता है कि काफिरों के खिलाफ मदद का मतलब यह है कि या अल्लाह आप हमको इतने अच्छे मुसलमान और इतना अच्छा नमूना बनाइए कि हम आपके दीन के तरफ काफिरों को अट्रैक्ट कर सकें और वो इस्लाम कबूल करें. हमको उनका माल लेके जायदाद लेके क्या करना है, अल्लाह का दिया सबके पास सभी है, सभी को दे रहा. और मुस्लिम कंट्रीज आर रिच कंट्रीज. कोई साहब बड़ा गुस्से में आके बोले साहब एक अजीब तमाशा है, हर मुस्लिम कंट्री में ऑयल है. बोले है? क्या करूं साहब, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं दिया ऑयल. नहीं बोले आप देखिए देखिए मैं क्या करूं, भाई जापान में कुछ भी नहीं है, खाली मेहनत है, इंटेलिजेंस है, मेहनत है, कमा रहे हैं. यूरोप में कुछ भी नहीं, अमेरिका में क्या है, यहां अल्लाह ताला खोद के निकाल के दे रहे हैं, बगैर मेहनत के जो है दे रहा, तो भी शुक्र नहीं कर रहे. सबसे ज्यादा भटके हुए हम लोग हैं. देखिए सबसे ज्यादा भटके हुए इसलिए है कि हम साहिब किताब होते हुए, आखिरी किताब जिसके बारे में दावा है कि एक हर्फ इसका नहीं बदला है, वैसी किताब हमारे पास रहते हुए और मुकम्मल सुन्नत हर फील्ड में जो है आपको हिदायत मिलते हुए, आप भटके हुए उस रास्ते से. मेजोरिटी भटके हुए. इस वक्त 6 मिलियन के पॉपुलेशन में आप 1.2 बिलियन है, 6 बिलियन में 1.2 बिलियन मुसलमानों का पॉपुलेशन है, मगर इसमें नाम के कितने हैं और काम के कितने हैं. नाम के तो बहुत से लोग हैं, ऐसी जैसा चेको याकूब जेकब, वैसे नाम के तो नाम आ जाएंगा, काम के कितने हैं. अब ये आखिरी पॉइंट इस सूरत में हमको ये नोटिस करना है कि देखिए ये जो दुआ है ये अक्सर नमाजों के बाद दुआ मांगी जाती है, ये दुआ है, दुआ का क्या मफहूम है, यहां हम जरा समझ लें ताकि बाकी कुरान में हमको बात साफ रहे। दुआ का मकसद क्या रहता, एक आजिजी हो। अब जैसा दुआ इस्तिखारा है, दुआ इस्तिखारा में मफहूम यह है कि या अल्लाह आपको कुदरत है, मुझे कुदरत नहीं है, आपको इल्म है, मुझे इल्म नहीं है, अगर आप समझते हैं कि ये मेरे हक में बेहतर है तो इसको करवा दीजिए, अगर आप समझते हैं ये मेरे हक में बेहतर नहीं है तो मत करवाइए, बिल्कुल प्लेन दुआ है। अब यहां एक पॉइंट आप देखेंगे कि वादा हुआ है ला युकल्लिफ अल्लाह नफ्सन इल्ला वसाहा, उसके बावजूद दुआ है रब्बना वला तहमिल अलैना वला तुहमिलना मा ला ताकत लना बिह, वायदे के बावजूद भी आप आजिजी, आप वायदा तो कर लिए फिर भी आजिजी है। फिर उसके बाद में आप सूरह बकरा में देखे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबा बनाने का हुक्म हुआ, हुक्म की तामील में काबा बना रहे हैं लेकिन दुआ कर रहे हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, क्या हमारे पालने वाले ये खिदमत हमसे कबूल कीजिए, आप सुनने वाले जानने वाले हैं, कबूल नहीं कर रहे, नहीं अब तो दिमाग नहीं है। जैसा मैं बोला था कोई आर्किटेक्ट साहब एक नक्शा बनाए, कोई कॉलेज की बहुत बड़ी बिल्डिंग का नक्शा बना के लेके गए, महीना भर मेहनत करके तमाम लेके गए, तो कमेटी वाले देख के बोले नहीं मियां ये क्या कबूतर खाना बना दिया, कबूल नहीं हुई मेहनत, एक महीने की मेहनत बेकार चली गई। तो इस तरीके से ऐसा ना हो कि हमारी इबादत, हमारी खैरात, एहसान जताने में, तकलीफ देने में, दूसरों की खुशी के खातिर करके तो मेहनत चले जाए, तो इसलिए कबूलियत की दुआ जरूरी है। फिर आखिरी पॉइंट यह है कि तकदीर पे ईमान लाने के बावजूद दुआ मांगना, खलका कुल शहीन फकदर हो तकदीरा, यानी हमने हर चीज पैदा की और उसकी तकदीर मुकद्दर कर दी, ईमान लाना है इस पे, फिर भी दुआ करना है। दुआ इसलिए करना है कि सूरह रात की 39 आयत में कहा गया है कि हमारे पास उम्मुल किताब है, असल किताब है, हम जो चाहते हैं उसमें कायम रखते हैं, जो चाहते हैं मिटा देते हैं। तो देखिए तकदीर इज नॉट द अल्टीमेट, अल्लाह ताला इज द अल्टीमेट, अगर वो चाहें तो तकदीर भी बदल दे सकते हैं। तो इसीलिए जो है सारी दुआएं अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। और आप यहां देखेंगे रब्बना ये तमाम प्लूरल में आया है, सिंगुलर में नहीं है दुआ, तो ये हमारी रिलीजियस यूनिटी के लिए दुआ मांगना है, पूरे प्लूरल में जमा में है, जहां जहां है ना 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 जहां आता है, यानी रब्बना ला तुआखिज़ना इन्ना सीना व अख्ताना, ये तमाम ना ना हम, तो ये इज्तिमाईयत इस्लामी यूनिटी के लिए है कि हम सारी कम्युनिटी के लिए जो है दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह ये दुआएं हमारी कबूल के जो। और फिर एक बात याद रखना है कि दुआ जहां तक हो सके वो कुरान और सुन्नत में जो दुआएं आई हैं उसमें तमाम चीजें कवर हो जाती हैं, वैसी दुआएं मांगना चाहिए। अगर भी खास मौकों पे बात खास दुआएं होती वो बात अलग होती, लेकिन ये दुआएं हैं हम उसको याद कर लेना चाहिए। तो ये सूरह बकरा खत्म हुआ।